लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा की पृष्ठभूमि। थाईलैंड में अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा संपन्न कर शनिवार को संत पापा फ्रांसिस ने जापान के लिए प्रस्थान किया। शनिवार को थाई समयानुसार प्रातः 9:30 बजे संत पापा और उनकी टीम थाई एयरवेज इंटरनेशनल विमान द्वारा बैंकॉक से टोक्यो के लिए रवाना हुए थे। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस ने 19 नवंबर को थाईलैंड और जापान में 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के लिए रोम से प्रस्थान किया था। यात्रा के प्रथम 3 दिन थाईलैंड में व्यतीत कर शनिवार को उन्होंने जापान का रुख किया है। थाईलैंड और जापान में संत पापा फ्रांसिस की यह पहली और इटली से बाहर उनकी 32वीं विदेश यात्रा है। इससे पूर्व संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1981 में जापान की प्रेरित यात्रा की थी। परमाणु हथियारों के विरुद्ध अपने अभियान के तहत संत पापा फ्रांसिस राजधानी टोक्यो के अतिरिक्त जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों का भी दौरा कर रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रूर परमाणु आक्रमणों का शिकार बने थे। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर स्थित अमरीकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी कर अमरीका को चुनौती दे दी थी। 1945 में हिटलर की पराजय के बाद जब जापान बिला शर्त समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ, तब 6 अगस्त 1945 की सुबह अमरीकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय तथा इसके 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया था। इन परमाणु आक्रमणों से जापान के ये 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। साथ ही लगभग 80,000 लोग मौके पर मारे गए थे तथा लगभग 3 लाख से अधिक लोग कुछ समय बाद रेडिएशन से उत्पन्न घातक रोगों से मरते रहे थे। नागासाकी में संत पापा फ्रांसिस 1945 के घातक आक्रमण से बच निकले कुछ लोगों से मुलाकात कर उनके संग प्रार्थना करेंगे तथा बम उपकेंद्र पर परमाणु हथियार विरोधी एक संदेश पढ़ेंगे। तदुपरांत हिरोशिमा में वे 1945 के बम आक्रमणों में मारे गए लोगों के स्मारक स्थल पीस मेमोरियल पार्क पर श्रद्धार्पण कर प्रार्थना अर्पित करेंगे। इसी बीच जापान की राजधानी टोक्यो में संत पापा फ्रांसिस 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना से बच निकले लोगों से मुलाकात कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। संत पापा फ्रांसिस परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं। 2017 में उन्होंने कहा था कि विश्व के राष्ट्रों को परमाणु हथियारों का भंडारण नहीं करना चाहिए, भले ही उनका लक्ष्य निवारक नीति हो। जापान विश्व का एकमात्र देश है जिसने परमाणु बम के दुखद परिणाम देखे हैं और इसीलिए वह निरस्त्रीकरण की वकालत करता रहा है। हालांकि वह भी एक विस्तृत निवारक रूप में अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की परमाणु छत्रछाया पर भरोसा रखता है। जापान में मिशनरी होना संत पापा फ्रांसिस की मंशा रही है। अपनी 3 दिवसीय जापानी यात्रा के दौरान प्रच्छन्न ईसाइयों से भी वे मुलाकात करेंगे, जो ख्रिस्तीय धर्म पर लगे प्रतिबंध के अंधकारपूर्ण काल में भी गुप्त रूप से अपने विश्वास का पालन करते रहे थे। 1873 में ही इस प्रतिबंध को हटाया जा सका था। इससे पूर्व जापान के ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों को नाना प्रकार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। जापान में ख्रिस्तीय धर्म का सूत्रपात संत फ्रांसिस जेवियर द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। जापान के अधिकांश लोग बौद्ध और शिंतो धर्मों के अनुयायी हैं। 12,60,00,000 की कुल आबादी में ख्रिस्तीय लोग 1% से भी कम हैं। कैथलिकों की संख्या यहाँ 5 लाख 36,000 है। यह जानना भी रुचिकर होगा कि ख्रिस्तीय लोग जापान के अभिजात वर्ग के बीच असमान रूप से मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ने धर्म को अपनाए बिना ख्रिस्तीय निजी स्कूलों में भी अपनी पढ़ाई की है। जापान के दो पूर्व प्रधानमंत्री भी कैथलिक धर्मानुयायी थे। सन 1918 से 1921 तक तकाशी हारा प्रधानमंत्री थे और 2008 से 2009 तक तारो आसो जापान के प्रधानमंत्री थे। बैंकॉक से टोक्यो हवाई यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने थाईलैंड के पड़ोसी देश चीन, ताइवान और हांगकांग के राष्ट्राध्यक्षों के नाम तार संदेश प्रेषित कर उनके देशों में सुख समृद्धि की हार्दिक शुभकामना व्यक्त की। परम धर्म पीठीय नवाचार के अनुकूल कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष अपनी हवाई यात्राओं के मार्ग में पड़ने वाले राष्ट्रों के नाम तार संदेश प्रेषित करते रहे हैं। हालांकि चीन ने लगभग 50 वर्षों पूर्व परम धर्म पीठ से कूटनैतिक संबंध तोड़ लिए थे, फिर भी चीन के राष्ट्राध्यक्षों को भी यह संदेश भेजा जाता रहा है। अपने पूर्ववर्तियों के समान ही संत पापा फ्रांसिस भी अपने परमाध्यक्षीय काल के आरंभिक बिंदु से ही चीनी सरकार समर्थित आधिकारिक कलीसिया और भूमिगत चीनी कैथलिक कलीसिया के बीच एकता का प्रयास करते रहे हैं। इसी के तहत 2018 में वैटिकन और चीन ने चीनी कैथलिक धर्माध्यक्षों की नियुक्तियों पर एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। दुर्भाग्यवश इसके बावजूद वैटिकन और चीन के बीच विशेष रूप से ताइवान को लेकर तनाव बने हुए हैं। शनिवार का पहला तार संदेश चीन के राष्ट्रपति झी जिनपिंग के नाम तब प्रसारित किया गया जब संत पापा का विमान हैनान द्वीप के हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था। संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, जापान के रास्ते चीन के हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए मैं आपको महानुभव सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चीन और उसके सभी लोगों को मैं अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं तथा आप सब पर शांति और आनंद की प्रचुर आशीष की कामना करता हूं। इसी प्रकार संत पापा ने हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम को प्रेषित तार संदेश में लिखा, आपके हवाई क्षेत्र से यात्रा करते हुए मैं आपको और आपके साथी नागरिकों को हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। दैवीय आशीष की प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके लिए शांति के सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर से मंगल याचना करता हूं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के नाम भी संत पापा ने तार संदेश प्रेषित किया तथा वहां के लोगों को भी अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देकर उन पर ईश्वर के आशीर्वाद की विनती की। वैटिकन वह अंतिम राष्ट्र है जिसके ताइवान के साथ कूटनैतिक संबंध बरकरार हैं। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना ही द्वीप मानता है और उसके अलग राष्ट्र होने का विरोध करता है। जापान में संत पापा फ्रांसिस की 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के येसु धर्म सामाजिक पुरोहित फादर रेंसो दे लुका उनके दुभाषिया होंगे। वैटिकन रेडियो से बातचीत में फादर रेंसो दे लुका ने संत पापा फ्रांसिस के साथ अपनी मैत्री, अर्जेंटीना में व्यतीत समय और जापान में उनके दुभाषिया होने का खुलासा किया। फादर रेंसो दे लुका ने बताया कि जापान में मिशनरी कार्य हेतु प्रेषित किए जाने से पूर्व वे अर्जेंटीना में येसु धर्म सामाजिक गुरुकुल में पढ़ते थे, जहां फादर जॉर्ज बेरगोलियो यानी कि संत पापा फ्रांसिस गुरुकुल प्रमुख थे। 35 वर्षों बाद आज फादर रेंसो जापान में येसु धर्म सामाजियों के प्रांताध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस की यात्रा के दौरान वे उनके संदेशों को जापानी भाषा में अनुदित कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फादर रेंसो ने बताया कि विगत 6 वर्षों में वे 2 मौकों पर संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात कर चुके हैं तथा दोनों ही अवसरों पर बिना किसी नवाचार के वे मित्रों के सदृश उनसे मिले थे। जापानी मीडिया में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा के कवरेज के सवाल पर उन्होंने बताया कि जापान के पत्रकार और सभी समाचार पत्र इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, जो उनके लिए तथा जापानी कैथलिकों के लिए भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है। कई समाचार पत्रों के साथ फादर रेंसो ने खुद भेंट वार्ताएं की हैं। येसु धर्म समाज के मुख्यालय में भी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें 38 विभिन्न मीडिया चैनलों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। साथ ही जापान के नेशनल ब्रॉडकास्टर NHK तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र योमोरी शिम्बुन ने भी कई कार्यक्रम और लेख इस प्रेरित यात्रा पर प्रकाशित किए हैं।
सेंट पापा फ्रांसिस थाईलैंड से विदा होकर 23 नवंबर को जापान पहुंचे और इसी से उनकी 32वीं प्रेरित यात्रा के दूसरे भाग की शुरुआत हुई। जापान की प्रेरित यात्रा जो अगले 26 नवंबर तक जारी रहेगी, सेंट पापा स्थानीय समय अनुसार 5:32 पर टोक्यो पहुंचे। शाम के बढ़ते अंधेरे के बीच हवाई अड्डे के प्रकाश में भारी वर्षा और तेज हवा के साथ जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो, धर्मदर्शों, पुरोहितों तथा कैथोलिक स्कूल के 100 विद्यार्थियों ने स्पानी भाषा में स्वागतम लिखे बैनर के साथ सेंट पापा का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के तुरंत बाद हवाई अड्डे के 30वें VIP कमरे में जापान के उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी छोटी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। करीब 20 मिनट बाद सेंट पापा हवाई अड्डे से प्रस्थान किए। वे जापान के चियोटा जिला स्थित प्रेरित दूतावास पहुंचे, जहां प्रांगण में करीब 200 विश्वासियों एवं प्रवेश द्वार पर दूतावास के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रेरित दूतावास में सेंट पापा ने कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन से मुलाकात की, जिनमें जापान के 3 महाधर्म प्रांतों एवं 13 धर्म प्रांतों के धर्मदर्श उपस्थित थे।
संत पापा ने धर्माध्यक्षों की ओर से जापान के सभी ख्रिस्तियों द्वारा किए गए स्वागत के लिए अपनी खुशी प्रकट की। संत पापा ने धर्माध्यक्ष ताकामी के परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने जापान के नए महाराजा के ताज अभिषेक और रीवा युग की शुरुआत के लिए बधाई दी। संत पापा ने कहा, आज इस धरती पर आकर उनका वर्षों का सपना साकार हो गया है। बचपन से उनके मन में जापान में मिशनरी बनकर आने की तीव्र इच्छा थी और जापान के लोगों के प्रति विशेष लगाव और अनुराग था। आज जापान की धरती पर विश्वास के महान गवाहों के नक्शे कदम पर एक मिशनरी तीर्थयात्रा के रूप में उपस्थित हैं। जापान में संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन के 470 साल बीत चुके हैं, जिसने इस भूमि में ख्रिस्तीय धर्म के प्रचार और विश्वास का बीज बोया। संत पापा ने उन सभी मिशनरियों को भी याद किया जिन्होंने जापान में ख्रिस्तीय विश्वास के प्रचार और प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। शहीद संत पॉल मिक्की और उनके मित्र धन्य जूस्तो चकायामा आदि अनेक शहीदों ने कठिन परिस्थितियों में भी छोटी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास को जीवित रखा। संत पापा ने नागासाकी क्षेत्र के छिपे हुए कैथोलिक समुदायों को भी याद किया जिन्होंने वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बपतिस्मा प्रार्थना और धर्म शिक्षा को बरकरार रखा। नाजरेत के पौत्र परिवार के रूप में स्थानीय कलीसिया अपने वजूद को रख पाई। संत पापा ने मिशनरियों को जापानी संस्कृति में अपने आप को संलग्न करने और कैथोलिक कलीसिया द्वारा जापान के सामाजिक विकास के लिए दिए गए योगदान की सराहना की। अपने देश और विश्वव्यापी कलीसिया के इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय को अब नागासाकी और आमाकुसा के गांवों और कलीसियाओं को विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। संत पापा ने कहा कि उनकी जापान की प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य सभी जीवन की रक्षा करना है। यह धर्माध्यक्ष के रूप में हमारे अपने प्रेरिताई का प्रतीक हो सकता है। एक धर्माध्यक्ष को ईश्वर अपने लोगों के बीच से बुलाता और फिर उसे एक चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों के बीच वापस भेजता है, जिससे कि वह सभी की रक्षा कर सके। यही हमारी प्रेरिताई का उद्देश्य और लक्ष्य भी होना चाहिए। संत पापा ने कहा, इस भूमि में मिशन को सांस्कृतिक अनुकूलन और संवाद के लिए एक शक्तिशाली खोज द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने यूरोप में विकसित होने वाले स्वतंत्र नए मॉडल के प्रशिक्षण की अनुमति दी। शुरू से ही जापानी भाषा में साहित्य, रंगमंच, संगीत और विभिन्न प्रकार के उपकरणों को नियोजित किया गया था। यह उस प्यार का संकेत है जो उन पहले मिशनरियों ने इस भूमि और लोगों के लिए महसूस किया था। सभी जीवन की रक्षा का अर्थ है आपको सौंपे गए पूरे लोगों के जीवन को प्यार करने में सक्षम होना। सबसे पहले इसे स्वीकारना कि यह ईश्वर का उपहार है। सभी जीवन की रक्षा करना और सुसमाचार की घोषणा करना में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों उन चीजों के बारे में सावधान और सतर्क करते हैं जो इस पृथ्वी पर बाधा डाल सकते हैं। यीशु के सुसमाचार के प्रकाश में लोगों के अभिन्न विकास को देखा जा सकता है। संत पापा इस बात से अवगत हैं कि जापान की कैथोलिक कलीसिया संख्या में छोटी है, परंतु सुसमाचार प्रचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम होने नहीं दिया। अपने दैनिक जीवन में अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ संवाद में खुलकर और स्पष्ट शब्दों में विनम्रता के साथ अपनी बातों को रख सकती है। संत पापा ने विदेशी श्रमिकों के आतिथ्य और देखभाल के लिए स्थानीय ख्रिस्तियों की प्रशंसा की, जो जापान के आधे से अधिक कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे न केवल जापानी समाज के भीतर सुसमाचार की साक्षी देते हैं, बल्कि विश्वव्यापी कलीसिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि मसीह के साथ हमारा संबंध किसी भी अन्य बंधन या पहचान से अधिक मजबूत है। संत पापा नागासाकी और हिरोशिमा के दौरे के बारे में कहा, जहां वे इन दो शहरों के विनाशकारी बम के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी अपील को फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। संत पापा उन लोगों से भी मिलना चाहते हैं जो अभी भी मानव इतिहास में इस दुखद प्रकरण के घावों को सहन करते हैं। वे ट्रिपल आपदा के शिकार भी हैं। उनका कष्टमय जीवन मानव और कैथोलिकों के कर्तव्य का बोध कराता है कि उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों के उपचार के साथ आशा और क्षमा का संदेश पहुंचाना है। संत पापा ने कहा कि बुराई की कोई प्राथमिकता नहीं है, यह बस अपने विनाशकारी बल के साथ फट जाता है, जैसा कि हाल ही में विनाशकारी तूफान के आने के साथ हुआ था, जिसमें बहुत सारे हताहत हुए और संपत्ति और अनेक घरों को नुकसान पहुंचा। संत पापा ने इन तूफान में मरे हुए सभी लोगों को प्रभु के चरणों में सुपुर्द किया तथा उनके परिवार के सदस्यों, संबंधियों और घायल लोगों के लिए भी प्रार्थना की। संत पापा ने कहा कि हमें जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, यह एक मिशन है। संत पापा ने कहा कि जापान की कलीसिया वर्तमान शिक्षा संस्थानों के लिए सराही गई है। यह बौद्धिक और सांस्कृतिक धाराओं के साथ एकाकीकरण के लिए एक महान संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके योगदान की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से इसकी विशिष्ट कैथोलिक पहचान और मिशन को बढ़ावा देती है। संत पापा ने जापान की वर्तमान परिस्थिति और गंभीर समस्याओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जापान के लोग विभिन्न कारणों से अकेलेपन, निराशा और अलगाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहरों में आत्महत्या की दरों में वृद्धि, दूसरों पर धौंस दिखाना और विभिन्न प्रकार की जरूरतें, अलगाव और आध्यात्मिक भटकाव के नए रूप सामने आ रहे हैं। चूंकि ये विशेष रूप से युवा को प्रभावित करते हैं, इसलिए संत पापा ने धर्माध्यक्षों से युवाओं और उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। संत पापा ने कलीसिया के मिशन को विकसित करने के लिए लोक धर्मियों और ख्रिस्तीय परिवारों को शामिल करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संदेश के अंत में संत पापा ने पुनः धर्माध्यक्षों को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। धर्माध्यक्षों के साथ मुलाकात के बाद संत पापा फ्रांसिस का जापान प्रेरितिक यात्रा का पहला दिन समाप्त होता है और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।